रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूरी अध्यात्म रामायण सुनने के बाद माता पार्वती ने प्रश्न किया कि रावण आदि को मारने के बाद भगवान की तो लीला समाप्त हो गई थी, फिर भी भगवान ने बहुत लंबे समय तक राज्याभिषेक के बाद भी यह लीला की, वो हमको सुनाइए क्या लीला की। और फिर उन्होंने अंत में अपना लीलामय श्री विग्रह किस प्रकार से छोड़ा, इसको भी हमें विस्तार के साथ सुनाओ। ज्यों ज्यों मैं कथा रूपी अमृत पी रही हूं, त्यों त्यों मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। कैसी विचित्र बात है, इतनी कथा सुनी मेरे मन में और आ रहा है और कथा सुने और कथा सुने। कथा पीयू समास्वाद्य तृष्णा में अतीव वर्धते। देखो भगवान की कथा से कथा में रुचि बढ़ती है। जैसे मलेरिया का बीमार होता है उसको पित्त के ज्वर में मिश्री अच्छी नहीं लगती, मिश्री में कड़वापन का अनुभव होता है। नीम का पत्ता दे उसको मीठापन का अनुभव होता है, पर बार 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 उसको मिश्री चुसाते जाए तो फिर मीठापन का ज्ञान हो जाएगा, फिर वैद्य कहेगा अब इसका मलेरिया बीमार ठीक हो गया। ऐसे ही संसार की बीमारी लगी रहती है तो भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो जो कथा सुनते हैं एक बार दो बार चार बार दस बार, फिर उसमें एक रुचि पैदा होती है। सजनों रुचि बनानी और क्या करना है, संसार की रुचि हटने का एकमात्र उपाय, हटाने का एकमात्र उपाय है कि वो भगवान की रुचि बढ़ जाए। भगवान शंकर कहने लगे तो सुनो देखो पार्वती आगे की कथा सुनाते हैं। भगवान का खूब आनंद से राज्याभिषेक हो गया, जिनको विदा होना था वो विदा हो गए, सब आनंद से काम चल रहा था। एक बार भगवान राम से मिलने के लिए कई ऋषि मुनि एक साथ इकट्ठे होकर आए। विश्वामित्र जी है, असित है, कण्व है, दुर्वासा है, भृगु है, अंगिरा है, कश्यप है, वामदेव है, अत्रि है, सप्तर्षि है, अगस्त्य है, सब आए। अब देखो लोग प्रश्न कर सकते हैं कि ये ऋषि हमारे रामावतार में भी, ये कि ये ऋषि कृष्णावतार में भी, यही विश्वामित्र जी यहां है, यही असित यहां है, यही कण्व यहां है, और इन्हीं ऋषियों में से बहुतों का नाम प्राय प्राय सब सबका नाम ही कह दे तो बहुतों का नाम तो है ही, एकादश स्कंद के पहले अध्याय में भी आता है यही ऋषि। तो ये ऋषि कोई अमर रहे थे क्या? ये बताना क्या चाहते हैं? रामावतार कृष्णावतार के बीच में तो एक युग का अंतर पड़ता है। त्रेता युग में रामावतार हुआ और द्वापर में कृष्णावतार हुआ, बीच में इतना अंतराल रहा, तो ये ऋषि क्या है? वो ऋषि थे कि कोई और थे, कि कोई नाम साम्य था, कि बात क्या है? भगवान तो कभी मरते नहीं है, भगवान का शरीर है वो प्रकट होता है और अप्रकट होता है, पर ऋषियों का शरीर तो ऐसा होता नहीं, वो तो पांच भूतों से बना हुआ है, वो तो मरे तो मरेगा ही। तो ये ऋषियों के शरीर वैसे के वैसे नाम आते हैं, बात क्या? इतने काल तक ऋषि जीवित रहते थे क्या? बहुत से ऋषियों का नाम तो सतयुग में भी आता है, नारद जी हैं जैसे, तो नारद जी को तो भगवान के अवतार कोटि में ले लिया, नारद जी अवतार कोटि में आते हैं। सनकादि ऋषि है, ये भी अवतार कोटि में आते हैं, पर हरेक ऋषि तो नहीं आते ना। विश्वामित्र जी है, अगस्त जी है, ये क्या है? तो देखिए इनका एक साधनामय वपु होता है, जिस साधना से वे जो है त्रेता युग में थे, वो साधनामय उनका शरीर होता है, उनका शरीर ये पांच भूतों का बना हुआ नहीं होता, उनका साधनामय शरीर होता है, इसलिए साधना में शरीरों से नाम किया जाए, साधना अमर होती है। इस जमाने में नारद और अंगिरा के दर्शन संतों को हुए, इस जमाने में नारद और अंगिरा के दर्शन हुए, आता है भाई जी के यहां आता है, गीता वाटिका में नारद और अंगिरा ऋषि आए, भाई जी से मिले, पहले के हम कल आएंगे, इस समय आएंगे, तो उनके बैठने की और की सब तैयारी करवाई, पता नहीं चला लोगों को, आए थे और वेश में, फिर वेश बदल लिए। ऐसे कई कारक पुरुष होते हैं जिनको भगवान ऐसा सामर्थ्य देते हैं, वो चाहे जैसा शरीर बना सके। आपने देखा ना कि सुग्रीवादी भी मनुष्य रूप में थे, तो ये तो बड़े ऋषि हैं, बड़ी भारी साधना की है, उस साधना के कारण से उनकी स्थिति कुछ और होती है, हम लोगों जैसी नहीं होती, शरीर ही अलग होता है, साधनामय वपु होता है। अस्तु, ये सब ऋषि मुनि वहां आए और द्वारपाल से कहने लगे कि द्वारपाल जी हमको राम जी से बहुत जल्दी मिलना है, द्वारपालम अथा ब्रवीत, हमको राम जी से बहुत जल्दी मिलना है, तुम हमको राम जी से मिलाओ। तब वो द्वारपाल जो है वो राम जी के पास गए, कहने लगे महाराज अनेक ऋषि आए हैं और आपसे जरूर मिलना चाहते हैं, अरे जल्दी बुलाओ, हम तो उनके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान स्वयं आगे गए, सब ऋषियों का पूजन किया, पूजन करने के बाद उन्होंने वहां पर सबको वहां बैठाया, सब लोग बैठे आराम से, कुशल क्षेम की बातें हुई। फिर भगवान राम को उन्होंने बताया कि हे राम, हम तो आपको आज लाखों लाखों बधाई देने आए हैं। पहली बधाई तो इस बात की है कि आपने राक्षसों को मारा, पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, पाप रहित पृथ्वी हो गई। दूसरी बधाई यह है कि आप अयोध्या के राजा होकर संसार में राजाओं के लिए बहुत उच्च आदर्श स्थापित करेंगे। और वास्तव में आपके लिए तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं रावण आदि को मारने में, क्योंकि आप जब धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं तो त्रिलोकी में किसका सामर्थ्य है जो आपसे युद्ध कर सके। बहुत अच्छा हुआ रावण आदियों के मरने से राक्षसों का भार हल्का हो गया और हम सब ऋषि मुनियों की तपस्या सुरक्षित रह गई। एक बात आपसे बताएं, आपने रावण को मारा ये बड़ी बात नहीं है, मेघनाथ को मारा ये बहुत बड़ी बात है। रावण को तो कोई बात नहीं, लेकिन मेघनाथ को आपने मारा। असह्यम एतत् संप्राप्तम रावणेरियन निषूदनम, आपने जो रावणी को मारा, रावणी माने रावण का पुत्र, रावणी को मारा, मेघनाथ को मारा, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। वैसे तो कुंभकर्ण वगैरह सब यमराज के समान बल वाले हैं, इनको इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं रह सकता, इनके बाणी अप्रतिम होते हैं, फिर भी आपने मेघनाथ को मार करके तो सबको अभय बना दिया। आज सारी पृथ्वी आपका गुणगान गाती है, ऋषि मुनि महर्षि सब आज जो है आपका यशोगान गाती है, और न जाने कितने कितने कल्पों तक ये गाती रहेंगी आपकी गाथाएं, और लोगों का उद्धार होता रहेगा। राम जी ने उन सब ऋषियों की बात को बड़े प्रेम से सुनकर हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि महाराज, मेरे सामने जब ब्रह्मा जी आए थे तो उन्होंने तो रावण का ही नाम लिया था, कुंभकर्ण का ही नाम लिया था, राक्षसों का नाम लिया था, खास करके रावण के वध के लिए प्रार्थना की थी, तो रावण को छोड़ करके आप, कुंभकर्ण को छोड़ करके, दूसरे राक्षसों को छोड़ करके आप मेघनाथ के लिए इतनी क्या बड़ी बात बताते हैं। मेघनाथ तो रावण का बेटा था, तो रावण ज्यादा बलशाली लग रहा था, मेघनाथ की इतनी बात क्यों प्रशंसा में कह रहे हैं। तो राम जी के बात सुनकर के अगस्त ऋषि मुस्कुराते हुए कहने लगे, वाह राम वाह वाह, आप जानते हैं फिर भी आप हमसे पूछते हैं, तो हमको खुशी इस बात की होती है कि आपके सामने कुछ निवेदन करने का हमारा भी सौभाग्य बन गया, तो हम आपको पूरी बात सुनाते हैं। रावण को क्या वरदान मिला है, इनके भाइयों को क्या वरदान मिला है, पुत्रों को क्या वरदान मिला है, हम आपके सामने संक्षेप से बात सुनाते हैं। देखो महाराज, सतयुग की बात है, सतयुग के अंदर ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक पुलस्त्य नाम के पुत्र हुए, वे सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने गए थे, बड़े अच्छे ऋषि थे, वे तृण बिंदु नाम के एक राजा के आश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे। वो ऋषि पुलस्त्य ऋषि स्वाध्याय में निरत थे, स्वाध्याय आजकल लोग स्वाध्याय मानते हैं पोथी पढ़ने को, लेकिन स्वाध्याय होता है अपने स्वरूप का चिंतन करना, अपने स्वरूप में स्थित रहना। जब आदमी अपने स्वरूप में चला जाता है तब स्वाभाविक ही वो जो है संसार से बहुत ऊपर उठ जाता है, कितना ऊपर इसका कोई मापतोल नहीं होता। तो वो पुलस्त्य जी थे, अपने आप में इतने मस्त हो गए, तो उनको कोई शोरगुल है, बातचीत है, ये बिल्कुल नहीं सुहाती थी। वो त्रिणबिंदु का आश्रम बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा सुंदर था सुमेरु पर्वत पर, तो वहां देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं गाती थी, नाचती थी, खेलती थी, कूदती थी, हंसाती थी, बोलती थी, जोर जोर से किलकारियां वगैरह करती थी, हंसती थी। तो पुलस्त ऋषि की तपस्या में बाधा पड़ती, वो अपने आप में थे बिचारे, ये अल्लाह गुल्ला नाचना गाना उनको अच्छा नहीं लगता था। तब उन्होंने देखा कि ये तो तपस्या में बाधा पड़ रही है, कहां जाए, इतना बढ़िया सुरम्य एकांत स्थान और ये देव कन्याएं गंधर्व कन्याएं कुछ समझती नहीं है। तब उन्होंने उस समय जो है अलग कहां जाने का तो विचार किया नहीं, और यही देखा कि भाई इस क्षेत्र के अंदर कोई न आवे, तो उन्होंने सबको चेतावनी दे दी कि देखो हम जिस क्षेत्र में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, उसमें कोई भी यदि यहां लड़की आ गई और हमारे आंखों के सामने आ गई तो फिर वो जो है गर्भ धारण करेगी और उसका बड़ा भारी अपमान हो जाएगा, इसलिए अपने सम्मान की सुरक्षा रखना, हमारी दृष्टि जहां तक जाए वहां तक कोई आया नाच गान करना न करे। तो सब देवांगनाएं गंधर्वांगनाएं भग गई वहां से, भग करके देखा भाई ऋषि का साप लग जाएगा, तो उस देश में गई नहीं। लेकिन जिस दिन साप दिया था उस दिन त्रिणबिंदु की जो कन्या थी उसने ये सुना नहीं, वो रोज के भांति वहां पर उस क्षेत्र के अंदर यूं घूमने के लिए निकली और निर्भय होकर ऋषि के सामने से जा रही थी। जो ही ऋषि के सामने से निकली तो ऋषि का साप लग गया, उसके शरीर में गर्भवती के लक्षण दिखे आए, तो वो एकदम आश्चर्य में डूब गई, अपने पिताजी के पास गई। पिताजी ने देखा कि रे भाई तुमने तो ऋषि का अपराध किया है, जब ऋषि ने वहां निषेध आज्ञा कर रखी है तुमको वहां जाना नहीं चाहिए था। तो उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं है कि अब तो ये उस ऋषि का ही कोप है, अब ऋषि के पास ही चलना पड़ेगा, बाप अपनी बेटी को लेकर ऋषि के पास आए और ऋषि से निवेदन करने लगे महाराज संसार में बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरी भी बदनामी होगी कन्या की भी बदनामी होगी, इसलिए इसे अब आप अपने पास रख लीजिए ताकि जब सब प्रकार से सबके सम्मान की सुरक्षा हो जाए, और सम्मान की सुरक्षा यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, आपकी तपस्या का एक अंग है। पुलस्त ऋषि ने बहुत विचार करने के बाद कहा तुम्हारी बात सही है, किसी का अपमान न हो ये व्यवहार के अंदर ध्यान रखना चाहिए, तो ठीक है तुम इसको हमारे पास रख दो। बेटी को कह दिया देखो बेटी अब ये तुम्हारे पति हैं और इनकी खूब अच्छी तरह से सेवा करना। वो बेचारे वापिस अपनी समाधि में बैठ गए। अब समाधिस्थ ऋषि की उस स्त्री ने इतनी सेवा की ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे कि देखो भाई तुम्हारे एक बड़ा दिव्य पुत्र होगा, तो तुमने बहुत सेवा की है तो तुम्हारे एक बड़ा अच्छा पुत्र होगा, थोड़े समय में पुत्र हुआ तो उसका नाम विश्रवा रखा, विश्रवा, उसको पौलस्त्य भी कहते हैं और विश्रवा भी कहते हैं। अब वो विश्रवा इतना सुशील लड़का, इतना अच्छा लड़का, इतना विनयावनत, तो भरद्वाज ऋषि ने अपनी कन्या का विवाह उस विश्रवा के साथ करने का प्रस्ताव रखा, तो पुलस्त्य ऋषि ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है पुत्र भी दिव्य है और तुम्हारी कन्या भी दिव्य है, तो उनका विवाह कर दिया। विश्रवा के फिर वैश्रवण हुआ जिसको कुबेर के नाम से बोलते हैं, ये कुबेर था, ये पुलस्त्य का पौत्र था, विश्रवा का पुत्र था, अपने यहां बोलते ना वैश्रवणो दधातु, ये वैश्रवण है ना वो कुबेर का ही नाम है, नमो वयम वैश्रवणो दधातु, वैश्रवण है ये, तो ये वैश्रवण है माने ये ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के अनुमोदन से ये कुबेर जो है ये उनका बेटा हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि बेटा तुम जाओ तपस्या करो, तब कुबेर को जन्म से ही तपस्या में लगा दिया। तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए और उसको धनाध्यक्ष बना दिया, धनाधीश बना दिया। देवताओं का और सबका धन है वो कुबेर के पास रहता है। और कुबेर को एक पुष्पक विमान भी मिल गया कि भाई इसको बहुत जगह धन को वितीर्ण करना पड़ता है, इसके पास में पुष्पक विमान होना चाहिए, जिस पुष्पक विमान से वो सब जगह आ जा सके। ब्रह्मा जी ने दिया पुष्पक विमान, यथेच्छ गति से जा सके, यथेच्छ गति से आ सके। एक बार ये कुबेर है वो अपने पिताजी से निवेदन करके कहने लगा, विश्रवा से कहने लगा कि पिताजी, ब्रह्मा जी ने मुझे धनाध्यक्ष बना दिया, ब्रह्मा जी ने मुझे पुष्पक विमान दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने मेरे लिए कोई रहने की जगह नहीं दी, आप कृपा करके मुझे कोई रहने की जगह बता दो। तो पिताजी ने खूब अच्छे ढंग से विचार किया, बेटा कौन सी जगह चाहिए, बस ऐसी जगह चाहिए जहां हिंसा न हो, ऐसी जगह चाहिए जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा न हो, मैं शांति प्रिय आदमी हूं, मुझे शांति चाहिए। तो खूब विचार करके विश्रवा ने कहा कि बेटा समुद्र के अंदर एक लंकापुरी है तो भाई वो राक्षसों की, राक्षसों के निवास के लिए ही ब्रह्मा जी ने बनाई थी, विश्वकर्मा ने बनाई थी, लेकिन राक्षस लोग हैं इस समय में भगवान विष्णु के भय से लंका को छोड़ करके और वे पाताल में चले गए, तो वो नगरी वहां पर खाली पड़ी है। और ऐसी सुंदर नगरी है कि इस पृथ्वी पर दूसरी कोई ऐसी नगरी मिलेगी नहीं, ऐसी सुंदर नगरी है, वहां पर जाकर के तुम निवास कर सकते हो। और वो राक्षस है वो सब जो है रसातल में चले गए हैं, वो रसातल में रह रहे हैं। वो पूरी इतनी सुरक्षित है कि कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है, चारों तरफ 100 कोस का व्यास बना हुआ है, 100 कोस नहीं 100 योजन का, कि पानी पानी समुद्र है, फिर उसमें पर्वत है, फिर पर्वत के वो चारों तरफ फिर खाई है, माने पर्वत पर्वत के बाद खाई है, फिर जंगल है, फिर प्रकोटे हैं, फिर जो है लंका है, ऐसे करके बहुत ही सुरक्षित है, तुम जाकर वहां रहो। तो पिताजी ने आदेश दे दिया, पुष्पक विमान पर बैठ करके कुबेर जाकर लंका में रहने लग गया। एक विभाग तो यहां पर एक चैप्टर पूरा हुआ। आगे बताते हैं कि एक सुमाली नाम का राक्षस था, वो पताल के अंदर ही रहता था अनेक राक्षसों के साथ में ही। तो वो रसातल से एक बार अपनी कन्या को लेकर के पृथ्वी पर आया, वो पृथ्वी पर आया और खूब इधर उधर घूम रहा था कि मेरी कन्या के लिए कोई अच्छा पति मिले। तो जो पृथ्वी पर आया तो आकाश मार्ग से कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़े हुए देखा उसने। फिर उसने विचार किया कि भाई ये कौन है, किसका बेटा है, तो पता चला कि ये जो है पौलस्त्य का पुत्र है, विश्रवा का बेटा है। तो कहा कि अब इसका जो बाप है उसके साथ में मेरी कन्या का विवाह होना चाहिए, ऐसा मन में सोच लिया। और सोच करके और वो उसकी जो कन्या थी उसका नाम था कैकसी, उस कैकसी को कहा कि देख कैकसी, हम जब भी तुम्हारे विवाह की बात करते हैं सदा तुमने विवाह के लिए ना ही ना, ना ही ना, ना ही ना किया है। इस ना का ये परिणाम होता है कि तुम्हारे साथ कोई विवाह नहीं करता। अब जो जो तुम्हारी अवस्था ढलती चली जाएगी तो फिर तुम्हारा विवाह असंभव होगा, और लड़की का विवाह नहीं होता है तो पिता माता के लिए बहुत कष्ट की बात होती है। इसलिए अब जो है तुम स्वयं ही अपने किसी पति को चुन लो। प्रत्याख्यानाच भीतैस्त्वम न वरै गृहसे शुभे। तुम आवे उसको नापसंद नापसंद करते हो करती हो, मैं भी किसी अच्छे योग्य वर को ढूंढता हूं तुम नापसंद करती हो, तो तुम स्वयं ही किसी स्वयमेव तुम जाकर के किसी अच्छे ऋषि को तुम चुन लो। यदि मेरे से पूछो तो वो जो ये कुबेर पुष्पक विमान पर बैठकर गया है इसके पिता के पास चले जाओ, इसके पिता यहां तृण बिंदु के आश्रम में रहते हैं, विश्रवा उनका नाम है। तो पिताजी आप नहीं चलेंगे ना, ऋषि मुनियों की जो तपस्थली होती है वहां हम राक्षस नहीं जा सकते, इसलिए तुम अकेली जाकर के उनसे बात करो। यदि तुम्हें ऐसे पुत्र चाहिए तो तुम विश्रवा के पास ही जाओ। तब वो केकसी थी वो विश्रवा के पास पे पहुंची आश्रम में, वहां जाकर वो बैठे हुए थे ध्यानस्थ, और पास में जाकर बैठ गई, नीचा मुख किए हुए बैठ गई। थोड़ी देर में उन्होंने आंख खोली, आंख खोल करके वो देखा कि भाई कौन हो तुम, कहां से आई हो, किस प्रयोजन से आई हो, का तुम कौन हो, कन्यासी वरवरिणी तुम कहां से आई, क्यों आई, क्या बात है। तब कहा महाराज मैं एक स्त्री हूं, स्त्री के पास लज्जा ही सबसे बड़ी शोभा होती है, अतएव मैं अपने मन की पूरी बात आपसे कहूं तो मुझे लज्जा आती है, आप अपने आप ही अपने ध्यान से समझ लीजिए कि मैं क्या चाहती हूं। ऋषि ने वापस ध्यान लगाया। देखो ये जो मन की बात जानने की बात है ना, ये ऋषि मुनियों के पास में सिद्धि होती थी, वो अपने मन को उनके मन के साथ मिलाने का सामर्थ्य रखते तो उसके मन की बात जान लेते थे, जिसके मन की बात जाननी होती थी तो उन्होंने उसके संकल्प को पहचान लिया। पहचान करके कहा कि भाई तुम्हारा संकल्प मैं पहचान लिया है, तुम श्रेष्ठ पुत्र चाहती हो, तो देखो तुमको भी सोचना चाहिए कि ये भगवान की भक्ति का और संध्या का समय है, इस समय में तुमको ये इच्छा न रख करके केवल भगवान की भक्ति की इच्छा रखनी चाहिए थी। तुम्हारे मन में तो ये आना चाहिए था कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, लेकिन तुमने ये इस अवस्था में ये बेटा कैसे मिले, बेटा मिले, ये मिले, ये लौकिक इच्छा की, तुम्हारे दो राक्षस होंगे। तब उसने कहा कि महाराज मुझे तो बड़ा दुख है, मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी कि मेरे राक्षस, और मुझे पता ही नहीं है किस समय क्या बात होती है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे राक्षस हो, और मुझे ये पता नहीं है कि किस ये कोई समय है, क्योंकि मैं ऐसे कुल में पैदा हुई हूं जिस कुल के अंदर ये बातें होती नहीं है, जहां भक्ति की बात नहीं होती, जहां कोई ऐसी बात होती नहीं, आज मैंने पहली बार बात सुनी है, और फिर आप जैसे ऋषि के पास आई हूं, और फिर मेरे ऐसे राक्षस बेटा पैदा हो। मेरे पिता तो मुझे कहते हैं कि तुम हर किसी का त्याग करते रहती हो, तो मैंने अपने मन से आपका वरण किया, और फिर आपसे मेरे राक्षस पुत्र पैदा होंगे, आप तो बहुत बड़े ऋषि हो। इस बात से विश्रवा ऋषि बड़े प्रसन्न भी हुए कि तुम्हारे अंदर संस्कार तो है वही, तो जाओ तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा कि जो है भगवान की भक्ति में परायण होगा, राम भक्ति के द्वारा संपूर्ण संसार उसको याद करेगा, एक पुत्र तुम्हारे ऐसा भी होगा। तो ऐसा उसने कह दिया। समय पर रावण पैदा हुआ। रावण जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसके 20 भुजा और उसके 10 माथे थे, और उसको जो पैदा हुआ तो उसके तेज से सारी पृथ्वी चलायमान होती थी। बबूवुर नाश हेतुनी निमित्तान निखलान्नपि, और संसार के नाश के जितने कारण होते हैं वो सारे कारण वहां पर प्रकट हो गए। सब घबरा गए, मां भी घबराई और पिता भी घबराए। फिर जो है कुंभकर्ण पैदा हुआ। देखो ये पैदा होते कोई ऐसे छोटे 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 नहीं हूं, पैदा नहीं हुए, ये ऐसे जो पैदा होते हैं ये देखो ये सिद्धिज पुत्र है, ये सिद्धियों से पैदा होने वाले पुत्र, ये औरस पुत्र नहीं होते, शारीरिक पुत्र नहीं होते, ये जो है मंत्रज पुत्र होते हैं, जो है तपस्या से पैदा होने वाले होते हैं, इनकी उत्पत्ति अपनी उत्पत्ति के समान नहीं होती। देखते ही देखते बड़े हो गए, महापर्वत सन्निभ है, फिर शूर्पणखा पैदा हुई और अंत में बड़ा सौम्य रूप विभीषण पैदा हुआ, ये चार संतान पैदा हुई, तीन भाई एक बहन, सबसे छोटा भाई, बहनों में सबसे छोटा विभीषण। कुंभकर्ण था, बड़ा दुष्ट आत्मा था, वो जब जिस समय में विचरण करता था खाने के लिए तो ऋषि मुनियों के समुदायों को एक साथ उठा उठा के खा जाता था। रावण भी था, वो भी बड़ा पीड़ा देने वाला था। रावण नाम क्यों हुआ कि रावयती थी, रावण है रावयती, रावयती माने जो रुलाता है, रुलाने के कारण से उसका नाम रावण पड़ा था। जैसे यामयो देही नाम ही वह, जैसे प्राणियों के शरीर में बीमारी पैदा होती है, वो बीमारी कोई सी भी बीमारी हो, वो सब बीमारी कष्टदायक होती है। एक सज्जन थे, उनको एक बीमारी थी, उसमें उनको जो है जलेबी और खीर ही देनी पड़ती थी, और एक ऐसी बीमारी जिसमें जो है हलवे के साथ ही दवाई ली जाती। तो कहते ये बीमारी तो आपकी बड़ी अच्छी भी, रोज आपको खीर जलेबी मिलती है, और आपको जो है बहुत अच्छी बीमारी, आपको जो सीरा हलवे के अंदर दवाई ली जाती है। उन्होंने कहा कि बीमारी से कष्ट कितना होता है वो मैं जानता हूं, रोज रोज हलवा खाने से और रोज रोज खीर जलेबी खाने से कितनी अरुचि हो रही है ये भी हम जानते हैं, बहुत तकलीफ होती है। बीमारी हो और कभी आराम क्यों, ऐसी तो कोई बीमारी हुई नहीं। तो बीमारी जैसे कष्ट ही देती है, ऐसे ये लोग सदा कष्ट ही कष्ट देते थे। रावण ये तो आप ये देखो, राम आप जानते ही हो कि इस रावण के द्वारा संसार में कितना कष्ट हुआ, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हुए आप सब कुछ जानने वाले हो, कितने निर्मल हो, कैसी आपने मानवीय लीला की है, आप अपनी महिमा में स्थित रहने वाले हो, माया के गुणों से कभी लिप्त नहीं रहते हो, ऐसे आप हमको राक्षसों के विषय में पूछ रहे हैं, तो देखो लोग तो आपकी कथा सुनाकर प्रसन्न होते हैं और हम आपको राक्षसों की लीला सुना रहे हैं, अब आपके पूछने पर हम सुना रहे हैं, क्या करें, आप जानते तो है ही लेकिन फिर भी आप पूछते हैं तो मैं सुनाता हूं आपको। मैं ये अंदर में समझ रहा हूं कि आप चिन्मात्र हैं, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं, आप अपने तत्व को समझने वाले हैं, फिर भी महाराज मैं आपको ये लीला सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, आप लीला सुनाइए, क्योंकि इस लीला के अंदर भी तो मेरा ही प्रकारांतर से गुणगान है। जितना आप रावण कुंभकर्ण को बलवान बताएंगे उतनी मेरी ही अंदर ही अंदर छिपी हुई महिमा भी तो प्रकट होती है कि ऐसे रावण को मारा, ऐसे कुंभकर्ण को मारा, और उनका भाई रहने वाला ये विभीषण और राम का भक्त हो गया। प्रकारांतर से मेरी ही कीर्ति का आप विस्तार कर रहे हो संसार के पाप के नाश के लिए, आप और सुनाइए, आगे सुनाइए। तो राम जी के वचनों को सुनकर के अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न होकर सबको आगे सुनाते हैं कि देखो इस प्रकार से सब पैदा हो गए सब बालक। एक दिन की बात है कि ये कुबेर अपने पिताजी के पास पुष्पक विमान पर बैठकर आया था, और पुष्पक विमान पर बैठकर आया और पिताजी के दर्शन किए, विश्रवा के दर्शन किए। तो उस समय में ये जो केकसी थी, उस केकसी ने रावण से कहा, अरे बेटा तुमने क्या वरदान लिए ब्रह्मा जी से, कैसे तुम्हारा शरीर, कितने तुम बलवान और कैसे तुम श्रेष्ठ पुत्र हो मेरे, लेकिन तुम कुबेर के समान तो नहीं हो। देखो कुबेर के पास पुष्पक विमान है, देखो कुबेर के पास कितना बल ऐश्वर्य है, देखो कुबेर का कैसा दिव्य शरीर है, तुम भी ऐसा ही बनो ना, तुम भी ऐसे ही ये लेओ और तुम भी ऐसे ही जो है पुष्प विमान अपने पास में रखो, बलशाली बनो। तो रावण को बड़ा ही उत्साह आया। रावण ने कहा ठीक है मां, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि या तो मैं कुबेर के समान बनूंगा या कुबेर से भी मैं श्रेष्ठ बनूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे मन में कोई संताप नहीं होना चाहिए, कुबेर क्या है मेरे सामने, ऐसा मैं बनूंगा। तब वो कहा कि मैं अपने भाइयों को भी साथ में ले जाना चाहता हूं, हम सब श्रेष्ठ बनेंगे। तो केकसी बड़ी प्रसन्न हो गई, वाह बेटा ऐसा तो उत्साह होना ही चाहिए। तो ये गोकर्ण क्षेत्र में चले गए तपस्या करने के लिए। वहां पर तपस्या करते करते कुंभकर्ण जी को 10,000 वर्ष हो गए, बड़ा भयंकर तपस्या की उन्होंने। उसकी तपस्या से संपूर्ण प्राणियों के अंदर गर्मी फैलने लगी। विभीषण जी ने एक चरण पर खड़े होकर 5,000 वर्ष तक तपस्या की और दशानन ने निराहार होकर दिव्य 1,000 वर्ष तक तपस्या की। दिव्य 1,000 वर्ष होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, 360 से गुणा करें तो 360 को 1,000 से गुणा करें 360,000 हुआ। इतने वर्षों तक उसने वहां पर तपस्या की और वे वो 1,000 वर्ष हो गए। तब जो है रावण वो अपने 10 सिर थे ना, एक सिर को काट करके और अग्नि में आहुति दी, फिर 1,000 वर्ष हुआ तो फिर दूसरी आहुति दी, फिर तीसरी आहुति दी। ऐसे हर 1,000 वर्ष के अंदर वो अपनी आहुति काट काट करके और देने लगा। तो 9 सिरों की तो आहुति दे दी, अब 10वें सिर की आहुति का जो ही समय आया त्यों ही ब्रह्मा जी प्रकट होकर के और रावण को रोकने लगे कि बेटा दशग्रीव, मैं तुम्हारे इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, तुम वरदान मांगो, तुम किस इच्छा से यहां पर मेरी तपस्या कर रहे हो। तो रावण के इस कहने से बहुत खुश होकर, ब्रह्मा जी के कहने पर रावण बहुत खुश हुआ और कहने लगा महाराज मैं तो अमर होना चाहता हूं, मैं कभी किसी से नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी मेरी आयु पूरी करने के बाद मरना ही पड़ता है। आदमी से मांगना वो चाहिए जो वो दे सकता हो, अमर तो मैं तुमको नहीं बना सकता हूं, लेकिन तुम मुझे बता दो कि किन किन से तुम मरना नहीं चाहते हो, उतना मैं काम कर सकता हूं। तो साहब देखो हम नागों से न मरे, हम गरुड़ से नहीं मरे, हम यक्षों से नहीं मरे, देवताओं से नहीं मरे, असुरों से नहीं मरे, राक्षसों से नहीं मरे, मनुष्यों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूं, मनुष्य क्या है, तृणभूता ही मानुषा, मनुष्य तो तिनके के समान है मेरे लिए, मनुष्य मनुष्य की परवाह नहीं करता हूं, देवता है, असुर है, राक्षस है, यक्ष है, सर्प है, इनकी मुझे जरूर चिंता रहती है, मनुष्य को कुछ नहीं समझता। तो ठीक है इन प्राणियों से तुम नहीं मरोगे और तुमने जो ये 9 सिर काटे हैं ना, अब ये 9 सिर मैं तुमको प्रदान करता हूं, जब तुम चाहोगे उस समय तुम्हारे ये 9 सिर जो है, ये 9 सिर है ये छिप जाएंगे चाहे जब प्रकट हो जाएंगे। फिर आए विभीषण के पास, बेटा विभीषण तुम तो धर्म के लिए ही वरदान मांगोगे ना, तपस्ततो वरम वत्से वृणीष्वाभिमतम हितम, तुम्हारा हृदय तो ऐसा ही बोल रहा है कि तुम धर्म के लिए वरदान मांगोगे, बोलो तुम्हारी तपस्या का क्या फल चाहते हो। तो विभीषण ने कहा महाराज मेरी बुद्धि कभी भी अधर्म में न जाए और धर्म की तरफ ही दौड़ती रहे, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, जाओ तथास्तु। ये तो बात तुमने मांगी लेकिन मैं तुमको अमर बनाता हूं। देखो ब्रह्मा जी ने उसको तो अमर होने का वरदान नहीं दिया लेकिन विभीषण को अमर होने का वरदान दिया। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं रहते तो ये कैसे अमर है, तो ये अमरता कहां की, पृथ्वी के अंदर दी है। पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक ये रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी तो फिर क्या करे। ब्रह्मा जी पृथ्वी के नष्ट होने के बाद भी रहते हैं, क्योंकि ये लोक नष्ट होते नष्ट होते होते ऊपर के लोकों में मिलते हैं और फिर ब्रह्मा जी के अंदर जाकर सब लीन हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी दोबारा बनाते हैं। ऐसे करते ब्रह्मा जी के अंदर लीन होना और प्रकट होना होता है। तो बिना चाहे हुए भी हम तुमको अमर होने का वरदान देते हैं। अब आए कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण से कहा तुम वरदान मांगो। तो देखो मनी मन में ब्रह्मा जी ने वाणी से कहा, सरस्वती से कहा, सरस्वती इसकी जीभ में जाकर बैठो। हमने बोल तो दिया, हमको कहना चाहिए था कि देखो भाई हम ये चीज तो दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते, पर अब क्या हुआ, हमने तो वरदान के लिए बोल दिया तो तुम जरा हमारी सहायता करो। तो सरस्वती जाकर के उसके जीभ में बैठ गई। वो मांगना तो ये चाहता था कि एक दिन सोऊं, छह महीने जगूं, लेकिन सरस्वती माता की कृपा से जगत के कल्याण के लिए कुंभकर्ण ने यही मांगा, स्वप्स्यामी देव षट मासान, छह महीने सोऊं और दिनम एकम तु भोजनम, एक दिन भोजन करूं। ब्रह्मा जी ने भी देरी नहीं की, तथास्तु 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 तथास्तु, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इतने में ही सरस्वती तो उसकी जीभ में से निकल गई। निकलते ही कुंभकर्ण यूं देखने लगा, ब्रह्मा जी बोलो बेटा मैंने क्या मांगा कि तुम ही सोचो। ब्रह्मा जी मैं तो उल्टा बोल गया, क्या उल्टा बोल गया, सो बोल गया, वो पानी तो मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया कि कहावत दूसरी है कोई। ये रैदास जी थे ना, ये जाति से चमार थे, बड़े अच्छे भगवान के भक्त थे। बीच में आ गई बात बता देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भगत आया वहां, रैदास जी से कहने लगा कि रैदास जी महाराज मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो रैदास जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ये कुंडी में पानी है ना, ये जल पिला दे। तब उसने कहा ये जल, ये तो चमड़े का कम, चमड़ा गीला रहता है ये। अच्छा 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 ठीक है, ये भगवान का भजन करो जाओ। वो चला गया। आगे गया तो एक और भगत मिला, वो रैदास जी के पास जा रहा था। तो उसने कहा कि जो है रैदास जी के पास, वो रैदास जी के पास कहां से आए कि मैं रैदास जी के पास आया हूं। अरे मैं भी तो रैदास जी के पास जाना चाहता हूँ। रैदास जी ने क्या कहा, अरे क्या क्या कहा बस। रैदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कह दी, क्या वो चमड़े का पानी है ना, वो चमड़े का पानी पिलाने के लिए बोल रहे थे। अब बताओ वो चमड़े का पानी मैं कैसे, मैं तो गया, भगवान की भक्ति कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो। अपनी बेटी से कहा कि पिला दो, ऐसा कहा कि हाँ। रैदास जी ने कहा कि हाँ, रैदास जी ने कहा। तो फिर जो है वो कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। वो गया कि ठीक है तुम जो है अपना काम करो, वो अपने विदा हो गया। अब वो गया रैदास जी महाराज भगवान की भक्ति मुझे कैसे मिले। अरे भगवान की भक्ति मिल जाएगी, जाओ एक पे वृक्ष है, वृक्ष के नीचे तुम कांटे डाल लो के खिले डाल दो और ऊपर से तुम नीचे गिर जाओ और सिर की तरफ से गिरना हो, भगवान मिल जाएंगे, बस 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 निहाल हो जाएंगे हम। वो रवाना हो गया। लड़की से कहा उन्होंने, लड़की से कहा कि तू इसको बता दे। लड़की ने कहा क्या जी, लड़की से कहा देख रैदास जी ने कहा ना कि हाँ रैदास जी ने कहा है। वो गया, वो वृक्ष पर चढ़ कर गया, वो आदमी प्रतीक्षा कर देगी क्या कहेंगे। तो कहा बस रैदास जी ने कहा है, ऊपर से कूजार मर जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो वही चढ़ने लगा, उसको भगवान बीच में ही मिल गए। अरे भैया मरने की जरूरत नहीं, तेरी निष्ठा से मैं यही दर्शन दे देता हूं। अब उस आदमी ने देखा कि अरे ऐसा यदि मैं पानी पी लेता तो भागो मुझे भी मिल जाता। इतने में क्या हुआ, लड़की की उन्होंने शादी कर दी और वो लड़की मुल्तान चली गई थी। अब वही आदमी वापस आया कि महाराज मुझे पानी पिला दो। भैया वो पानी तो मुल्तान चला गया, हमने उस लड़की की शादी कर दी भैया। तो कुंभकर्णस्तु दुष्टात्मा चिंतया मास दुखित है। कुंभकर्ण बहुत चिंतित हुआ, चिंतित होकर के और विचार करने लगा कि अब क्या होगा, मेरे मुंह से तो बात निकल गई सो निकल गई, अब क्या करें। अब वे सब के सब बेटा आगे अपने पिता माता के वहां आ गए। एक अध्याय यहां खत्म होता है।